पिंकेश कुमार की आवाज़ में बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के सिद्धांत अध्याय लोकतंत्र। अरस्तु के समय से लेकर आज तक साधारणतया शासन व्यवस्था के तीन रूप प्रचलित हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। भूतकाल में शासन साधारण रूप से राजतंत्रात्मक या कुलीन तंत्र शासन व्यवस्थाएं प्रचलित थी, किंतु लंबे समय से ऐतिहासिक अनुभव से यह स्पष्ट हो गया कि राजतंत्र या कुलीन तंत्र जनसाधारण के हित में कार्य न करके कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों और विशेष स्वार्थों का ही ध्यान रखते हैं। शासन के रूप में लोकतंत्र। लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द विधान के अनुसार डेमोस और क्रेटिया से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य शासन की शक्ति से होता है। अतः इस रूप में लोकतंत्र उस शासन पद्धति को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को के द्वारा संपूर्ण जनता के हितों को ध्यान में रखकर शासन करती है। ब्राइस के शब्दों में लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में ही न होकर संपूर्ण जनसमुदाय में निहित है। सीले के अनुसार लोकतंत्र वह शासन में जिसके प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। परंतु लोकतंत्र की विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग व्याख्या की है। लोकतंत्र के परिभाषा के रूप में सर्वप्रचलित मान्यता है जो अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। लोकतंत्र की विभिन्न विशेषताएं निम्न हैं। पहला, इसके अंतर्गत जनता की प्रतिनिधि शासन संचालित करती है। दूसरा, इसमें जनताओं के हितों का रक्षण होता है। तीसरा क्या हुआ? जनता के प्रति उत्तरदायित्व होता है क्योंकि शासक द्वारा शक्ति का प्रयोग जनसाधारण के हित में ही किया जाता है। उपयुक्त विशेषताओं के अनुसार यह कहा जा सकता है कि शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र के अंतर्गत सर्वसाधारण जनता की सरकार की स्थापना करती है। सरकार सर्वसाधारण के हितों की रक्षा करती है, उसके इच्छानुसार ही पदासीन रहती है। राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। यह निश्चित अनुभव किया गया कि प्रतिनिधि भी कम से कम एक निश्चित समय तक राजा या कुलीन वर्ग के समान ही शक्ति का भ्रष्ट प्रयोग करते हैं। इस बात को लक्ष्य करते हुए रूसो ब्रिटिश प्रजातंत्र पर कटाक्ष करता है। इंग्लैंड केवल चुनाव के दिन ही स्वतंत्र होता है। हांसा के रूप में राज्य के प्रकार के लोकतंत्र शासन की एक विधि नहीं अपितु वह सरकार के नियुक्त करने, उस पर नियंत्रण करने और उससे अपदस्थ करने की विधि है। अच्छा, सामाजिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र। समानता की घोषणा भर कर देने से व्यवहार में सभी व्यक्ति समान नहीं हो जाते हैं। तब व्यक्तियों का अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य व्यक्ति के रूप में ही होता है और जाति, रंग, लिंग, संपत्ति के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी व्यक्तियों को लोकतंत्र में समान समझा जाता है और समान अधिकार और अवसर का उपयोग करते हैं। लोकतंत्रात्मक समाज के संबंध में बेनी प्रसाद कहते हैं, यह जीवन का एक ढंग है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जिसका किसी अन्य के सुख का महत्व हो सकता है, तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं होता है। प्रोफेसर हॉर्न सा लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो और समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। आर्थिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र। अर्थ ने मानव जीवन में आज महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। सभी कार्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ से ही चालित होते हैं। अतः वातावरण में जीवन का आर्थिक पक्ष महत्वपूर्ण होता है। यदि आर्थिक क्षेत्र में समानता स्थापित न हो जाए तो राजनीतिक और सामाजिक समानता का कोई मूल्य नहीं होता है। अतः लोकतंत्र के रूप में आर्थिक व्यवस्था इसी होनी चाहिए कि सभी व्यक्तियों को आवश्यक रूप से आर्थिक न्यूनतमता प्रदान की जानी चाहिए और उद्योगों के प्रबंध के संदर्भ में प्रजातंत्रात्मक धारणा को अपनाया जाना चाहिए। जीवन का विशिष्ट दृष्टिकोण। प्रत्येक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक प्रकार ही नहीं है, बल्कि यह तो जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी है। इसके अंतर्गत मनुष्य का एक विशेष प्रकार का स्वभाव तथा सामाजिक व्यवहार होना चाहिए। सबके हृदय में क्षमा, सहिष्णुता, सेवा, परोपकार, विरोधी के दृष्टिकोण के प्रति आदर भाव, मानवीय व्यक्तित्व के प्रति सम्मान आदि समझौते की प्रवृत्ति विद्यमान हो। प्रजातंत्र में सभी व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान और प्रति वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा अपने प्रति सोचते हैं। गिंडिंग्स के अनुसार प्रजातंत्र केवल सरकार का ही रूप नहीं वरन राज्य और समाज का रूप अथवा इन तीनों का मिश्रण भी है। लोकतंत्रात्मक शासन के दो भेद माने जाते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधित्मक लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जब प्रभु सत्तावान जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है, नीति निर्धारित करती है, कानून बनाती है, प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करती है और उस पर नियंत्रण रखती है तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। आंसा के अनुसार शुद्ध रूप से लोकतंत्र या शासन वह है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है। प्राचीन काल में ग्रीक के नगर राज्यों, सिटी स्टेट्स और भारत के बज्जी संघ में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन ही प्रचलित था। वर्तमान में स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों आउटर अपनजेल, इनर अपनजेल, उटी, उन्टकवाल्डेन तथा ग्लारस में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था कम जनसंख्या वाले छोटे नगरों में ही हो सकती है और वर्तमान समय के विशाल राष्ट्रीय राज्यों में इसे अपनाना मुश्किल है। प्रतिनिधित्मक या अप्रत्यक्ष व्यवस्था, जब प्रभुसत्तावान जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रभुसत्ता का प्रयोग न करें, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, तो प्रतिनिधित्मक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधित्मक लोकतंत्र वह होता है जिसमें संपूर्ण जनता अथवा उसका बहुसंख्यक भाग शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों का द्वारा करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है मिल के अनुसार। इसी प्रकार हानसा के शब्दों में प्रतिनिधियों के माध्यम से सर्वोच्च संता जनता का शासन होता है। इसमें संविधान द्वारा निर्वाचित निश्चित अवधि के लिए जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो कानून निर्माण करने वाली सभा व्यवस्थापिका के द्वारा नीतियों का निर्धारण करते हैं। लोकतांत्रिक शासन के मूल लक्षण या विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। पहला, लोकसत्ता में विश्वास। दूसरी, लोकप्रिय और नियतकालिक चुनाव होते हैं। चुनाव को टालने का शासक वर्ग को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और तीसरा, लोकप्रिय नियंत्रण होता है क्योंकि शासक जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। लोकप्रिय प्रभाव उत्तरदायित्व। बी, राजनीतिक और नागरिक समानताएं प्राप्त होती हैं क्योंकि समानता लोकतंत्र का मूल आधार है और समानता के बिना वर्तमान समय में राजनीतिक और नागरिक से आगे सामाजिक और आर्थिक समानता लोकतंत्र का लक्ष्य है तथा धर्म जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव प्रचलित नहीं होना चाहिए। तीसरा, राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं स्वतंत्र लोकतंत्र की आत्मा है और लोकतंत्र तभी संभव है जब सभी व्यक्तियों को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हो। प्रतिनिधि का आलोचना करने का अधिकार, विचार और व्यक्ति, भाषण, प्रेस इत्यादि की स्वतंत्रता होनी चाहिए। चौथा, व्यक्तियों के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव। लोकतंत्र मानवीय व्यक्ति के सम्मान और गौरव में विश्वास करता है और समानता स्वतंत्रता भ्रातृत्व की स्थिति प्राप्त करने का साधन है। पांचवा, मानवीय विवेक में विश्वास। लोकतंत्र वर्गसन के अभिधिवाद में विश्वास नहीं करता जिसके अनुसार वो मात्र भावनाओं का पुतला बताया गया है। संघर्ष के बजाय लोकतंत्र में तीव्र मतदान तथा विवाद की स्थिति में भी संघर्ष के बजाय विचारों के आदान प्रदान से ही समस्या का हल ढूंढना चाहिए। कौड़ी और हार्ड्स के शब्दों में लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया वाद विवाद, मेल मिलाप और समझौते की प्रक्रिया है। छठा, बहुमत का शासन। इसमें बहुमत को न्यायपूर्ण और अल्पमत के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अल्पमत भी संवैधानिक तरीकों के द्वारा अपने को बहुमत में परिणत करने का प्रयत्न किया जा सकता है लेकिन उसे गैर संवैधानिक तरीका अपनाने का अधिकार नहीं हो सकता। सातवां, शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के 3 अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसमें कुछ कमियां हो सकती है लेकिन शक्ति विभाजन अपनाना अनिवार्य होता है तथा न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से पूरी तरह दबाव मुक्त होना चाहिए। आठवां, संविधानवाद। संविधानवाद का आशय सीमित शक्तियों वाला शासन होता है और लोकतंत्र की मूल मान्यता होती है शासन को सीमित शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए और असीमित नहीं। हैरिंगटन के अनुसार लोकतंत्र की मान्यता है विधियों का शासन, विधि की सर्वोच्चता व्यक्तियों का शासन नहीं है। लोकतंत्र के गुण निम्नांकित हैं, इसमें वर्ग विशेष के कल्याण के लिए ही कार्य किया नहीं किया जाता बल्कि समस्त जनता के कल्याण हेतु काम किया जाता है। निम्न गुण है, एक, जल कल्याण की साधना। लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधि उनकी इच्छा और भावनाओं और आवश्यकताओं से परिचित होकर उनके लिए काम करते हैं। दूसरा, सर्वाधिक कार्यकुशल शासन होता है। लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरे किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा लोकतंत्र अधिक कार्यकुशल होता है। तीसरा, सार्वजनिक शिक्षण। यह एक शासन का प्रकार नहीं बल्कि राज, समाज और आर्थिक व्यवस्था का प्रकार है, अतः इसके द्वारा जनता को प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी प्रकार का शिक्षण प्राप्त होता है। वर्ण से लिखते हैं, सभी शासन शिक्षा के साधन होते हैं किंतु सबसे अच्छी शिक्षा स्वशिक्षा है। इस सबसे अच्छा स्वशासन है जिसे लोकतंत्र कहते हैं। गैटन ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल बताया है। चौथा, मनोविज्ञान के अनुकूल। आशीर्वादंग शब्दों में, लोकतंत्र से सरकार और जनता के बीच सहानुभूतिपूर्ण संबंध स्थापित होता है और व्यक्ति गुपचुप तरीके से स्वीकृति देने के बजाय एक सक्रिय सहयोगी बताता है। रॉकिंग के शब्दों में, लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता है। पांचवा, जनता का नैतिक उत्थान। प्रजातंत्र जनता को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर उसमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना भरती है। ब्राइस कहते हैं, राजनीतिक अधिकारों को प्राप्ति द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व की शान बढ़ जाती है और स्वभावतः कर्तव्य भावना से उच्चतर स्तर तक उठ जाता है जिसका पालन उसे राजनीतिक अधिकारों को प्राप्ति के लिए करना पड़ता है। जॉन स्टुअर्ट मिल कहा है, यदि किसी भी अन्य शासन की अपेक्षा उच्च और श्रेष्ठ राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है, लॉवेल, अंत में वही सरकार श्रेष्ठ है जो मनुष्य की नैतिकता, उद्योग साहस, आत्मबोध और प्रवृत्ति को दृढ़ बनाए रखे, क्योंकि प्रजातंत्र में इस बात पूरा होता है, यह सबसे अच्छा शासन है। छठा, देशभक्ति का स्रोत होता है। मिल, लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है क्योंकि नागरिक यह अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की उत्पन्न की हुई वस्तु है और अधिकारी उनके स्वामी न होकर सेवक हैं। लेवेलिये ने कहा है, फ्रांसीसी जनता क्रांति के बाद से ही फ्रांस से प्रेम करने लगी जबकि उन्हें शासन की व्यवस्था में भाग मिला। सत्ता क्रांति से सुरक्षा, गिलक्रिस्ट कहते हैं लोकप्रिय शासन सार्वजनिक सहमति का शासन है, अतः स्वभाव से ही वह क्रांतिकारी नहीं होता है। वंश, मंत्रियों और विधानसभाओं में बहुमत को बदलने की प्रक्रिया सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रांति का एक विकल्प प्रदान करती है। आठवां, लोकतंत्र समानता और स्वतंत्रता के आदर्श पर आधारित है, अतः इसमें लिंग जाति आधार पर भेदभाव नहीं होता। नवां, विचार विनिमय और समझौते की भावना उत्पन्न करता है, इसमें नागरिकों के बीच सहिष्णुता, उदारता, स्नेह, सहानुभूति, व्यवहार, विचार विनिमय और समझौते की भावना उत्पन्न होती है और अपने व्यवहार में प्रवृत्तियों के आधार पर सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं। दसवां, विश्व शांति का समर्थन, क्योंकि राजतंत्र, सैनिक तंत्र और फासिस्ट तानाशाही शासक एक दूसरे के बीजा पर बल देते हैं, परंतु समवादी सरकारें भी विचारवादी नीति में विश्वास करती है, परंतु लोकतंत्र आंदोलन शांति का आंदोलन रहा है, बर्क कहते हैं। ग्यारहवां, विज्ञान का श्रेष्ठ प्रोत्साहक है, क्योंकि राजतंत्र और कुरुणी तंत्र के अंतर्गत स्वतंत्रता का वातावरण का लगभग अभाव होता है, जिसके अभाव में विज्ञान का विकास नहीं होता, अतः लोकतंत्र और विज्ञान दोनों के नैतिक मूल्य एक हैं, अतः इनका दृष्टिकोण भी एक है। मेयो के शब्दों में एक स्वतंत्र समाज में वैज्ञानिक विकास की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। लोकतंत्र के दोष, लोकतंत्र का विशद गुणों का विशद विवेचन किया जाता है और दूसरी बार इसकी कठोर शब्दों में आलोचना भी होती है। टेलीरेंड ने इसे दुष्टों का कुलीन तंत्र कहा है, लुडोविसी ने कहा है प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाते हैं। इसके निम्न दोषे हैं, पहला अयोग्यताओं की पूजा, इस सिद्धांत पर आधारित होता है प्रत्येक व्यक्ति केवल एक ही मत दिया जाता है, लेकिन योग्यता की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं। इसमें कर्लाइल कहते हैं विश्व में एक व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख होते हैं और सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम मूर्खों की सरकार की स्थापना होती है, लेकिन इसे निर्धनतम, अज्ञानतम और अयोग्यतम लोगों की सरकार कहते हैं। न्यायाधीश जेम्स स्टीफंस के अनुसार एक महान देश का अच्छे प्रकार से प्रशासन करने के लिए विशेष ज्ञान और उच्च योग्यताओं के निरंतर एवं समस्त प्रयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन लोकतंत्र तो अज्ञानी अप्रशिक्षित और अयोग्य व्यक्तियों की सरकार होती है। फेनेट ने लोकतंत्र को अज्ञानता भरा शासन कहा है, एचजी बेल्स ने इसे बुद्धिमीन तथा अज्ञानियों का शासन कहा है, प्रोफेसर हार्नसन ने लोकतंत्र की अक्षमता का सुंदर चित्रण किया है कि लोकतंत्र के नेताओं की स्थिति उन स्कूल मास्टरों जैसी होती है जिनकी नियुक्ति विद्यार्थियों की इच्छा से ही होती है और विद्यार्थियों की इच्छा से हटाया जाता है, अतः लोकतंत्र की अकुशलता का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा, दल प्रणाली का अहितकर प्रभाव, इसमें लोकतंत्र में अनेक दल होते हैं जो कि इन कई प्रकार शासन में शक्ति प्राप्त करना ही अपना लक्ष्य समझते हैं और चतुर स्वार्थ सिद्धि करने में चतुर होते हैं। कर्लाइल के अनुसार राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए अनेक का पागलपन होता है, इन दलों के कारण धूर्त और बकवासी व्यक्ति के हाथ में शासन शक्ति आ जाती है। ब्राइस के शब्दों में राजनीतिक दल कपट को उत्साहित करते, आदर्श स्वाभाविक आदर्शों को हीन करते और राष्ट्र के जीवन में कूट फूट लाकर लूट का माल बांटते हैं। तीसरा, भ्रष्ट शासन व्यवस्था, सैद्धांतिक स्थिति चाहे भी हो जो हुई हो, व्यवहार में लोकतंत्र शासन बहुत अधिक भ्रष्ट होता है, क्योंकि शासन राजनीतिक दल विशेष के अनुसार ही किया जाता है और सभी प्रकार से उन्हें शासन का लाभ पहुंचाया जाता है। ब्राइस के शब्दों में राजनीति में धन का बल शीर्षक अध्याय में कहा है, अनेक उदाहरण हैं जिसमें निर्वाचकों, विधायकों, प्रशासकीय अधिकारियों और न्यायाधिकारियों ने धन के सम्मुख सिर झुका दिया है। चौथा, सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय, इसमें धन और समय का अत्यधिक अपव्यय होता है, जिन कानूनों का निर्माण कुछ दिनों में होता है, लोकतंत्र विधानसभाओं में लंबी और जटिल प्रक्रिया के कारण वर्षों कानून हो जाते हैं और कई बार तो कानून पारित होने तक कालातीत हो जाते हैं। ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसी समिति है जिसमें अंतर्गत 7 सदस्यों द्वारा 7 दिनों में उतना ही कार्य किया जाता है कि जितना कि एक व्यक्ति एक दिन में कर सकता है। इनमें चुनाव के समय बड़ी संख्या में अधिकारियों को नियुक्त करने और सार्वजनिक धन की बर्बादी होती है। बागटकर ने लिखा है, लोकतंत्र अपनी प्रकृति से ही शीघ्र निर्णय के अनुकूल नहीं है। पांचवा, सर्वतोमुखी प्रगति की संभावना, वंश कहते हैं प्रजातंत्र जिस सभ्यता को जन्म देता है वह दूसरी साधारण एवं मंद होती है। सन हेनीमैन और लिवोन भी इसका समर्थन करते हैं। राजतंत्र और कुलीनतंत्र में समानता, शासक वर्ग साहित्य, कला और संगीत का प्रेमी होता है और शासक वर्ग का आशय पाकर साहित्यकार, कलाकार और विद्वान निश्चितापूर्वक कार्य करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में समस्त ध्यान राजनीति पर केंद्रित हो जाने के कारण साहित्य और क्षेत्र कला के क्षेत्र में अधिष्ठानता व्याप्त हो जाती है। छठा, लोकतांत्रिक समानता एक भ्रम है, वर्ग कहते हैं प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच मात्र है, इसमें एक निर्धन व्यक्ति चुनाव में खड़े होकर विजय प्राप्त करने की सोच ही नहीं सकता क्योंकि चुनाव में काफी धन और समय की बर्बादी होती है। सातवां, अनुत्तरदायी साधन, हर्षना कहते हैं लोकतंत्र की प्रवृत्ति सार्वजनिक मामलों में कैसे अविचार, एक ऐसे असंयम, एक ऐसे पागल के प्रदर्शन की ओर है जिनका कोई सदस्य अपने व्यक्तिगत मामलों को प्रदर्शित करने का स्वप्न नहीं देख सकता। आठवां, राजनीतिक शिक्षण का दम, क्योंकि चुनाव के समय राजनीतिक दल झूठ, प्रपंच, छल बल का सहारा लेते हैं और जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। नवां, मतदाता उदासीनता, लोकतंत्र में मतदाता सक्रिय नहीं होते हैं। रॉबर्ट टेहल कहते हैं चुनाव से हमारी अपेक्षा यह होती है कि उसमें कुछ निश्चित विषयों के संबंध में बहुमत की इच्छा अथवा वरीयता का पता लगाया जा सके। परंतु ऐसा चुनाव बहुत कम होता है। आशीर्वाद हम लिखते हैं, मतदाताओं की उदासीनता का नतीजा होता है कि शक्ति कुछ ऐसे अविवेकी लोगों के हाथों में चली जाती है जो लंबे चौड़े वायदों और झूठे सच्चे तर्कों पर जनता को बहलाने और उचित लाभ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 10वां, पेशेवर राजनीतिकों का विकास होता है और लोग राजनीति को अपना धंधा बना लेते हैं और भ्रष्ट साधनों से उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। 11वां, युद्ध और संकट के समय निर्मल वस्तु सत्ता के एकीकरण के स्थान पर लोकतंत्र में सत्ता का फैलाव होता है जिसके कारण युद्ध के समय तत्कालीन निर्णय लेने में कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त सर्टोनी ने विचार व्यक्त किया है, अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र अधिक जटिल और दुर्बोध शासन है। पिकल्स द्वारा अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी में इसे कठिन कठिन शासन व्यवस्था कहा है। निष्कर्ष, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनेक दोष हैं परंतु शासन व्यवस्था में निश्चित रूप से सभी व्यवस्था में कमियां हैं और लोकतांत्रिक शासन के जो विविध दोष बताए हैं वे तो वर्तमान समय की दोष हैं, परिस्थितियों का परिणाम है और मानवीय प्रकृति का परिणाम है। लेवल ने कहा है, कोई भी शासन व्यवस्था सभी मानवीय दोषों के लिए रामबाण औषधि नहीं है। इसके साथ अन्य तथ्य है कि अन्य शासन व्यवस्था और राजतंत्र कुलीन तंत्र अधिकायक तंत्र में दोष लोकतंत्र की तुलना में ज्यादा होते हैं। ब्राइस के शब्दों में कहा जाता है, लोकतंत्र पर अनेक आक्षेप किया जा सकते हैं लेकिन लोकतंत्र से अच्छी शासन व्यवस्था की खोज मानव जाति ने अभी तक नहीं की है। इन सब के अतिरिक्त डिबेट, एलवुड, हाव हाउस, जोड ब्राइड और मिल आदि लेखकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि वह लोकतंत्र मानवीय व्यक्तित्व के चरित्र का विकास करने में समर्थ है। वस्तु लोकतंत्र से बढ़कर आत्म सुधारवादी सरकार या राजनीतिक व्यवस्था कोई भी दोषी नहीं आता। लोकतंत्र को आज की सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहता है। लोकतंत्र की सफलता हुई आवश्यक परिस्थितियां, लोकतंत्र में जिन दोषों का उल्लेख किया गया है वे दोष स्वयं लोकतांत्रिक शासन के न होकर व्यक्तियों और प्रवृत्तियों के हैं जिनके माध्यम से लोकतंत्रीय शासन में प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। अतः लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था यथा राजा यथा प्रजा के आधार पर निर्भर होती है। इस शासन व्यवस्था में सुधार करने का एकमात्र उद्देश्य व्यवहारिक मार्ग मानव व्यवहार को सुधारना है। इसके अतिरिक्त ऐसे वातावरण के निर्माण की आवश्यकता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और अपनी बुद्धि का सामूहिक हित में प्रयोग कर सके। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए प्रमुख रूप से निम्नलिखित पद्धति आवश्यक होती है। पहला, नागरिकों का नैतिक उत्थान। हार्नशा लिखता है, लोकतांत्रिक सिद्धांत का रूप अनिवार्यता धार्मिक होता है। लेवल, जनप्रिय सरकारें उस समय तक भ्रष्टाचार से बिल्कुल नहीं मुक्त हो सकती जब तक राह चलते नागरिक साधारण नागरिक का नैतिक स्तर ऊंचा नहीं होता और भ्रष्टाचारियों का सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जाता। दूसरा, शिक्षित और जागरूक जनता। यह ठीक ही कहा गया है कि सतत जागरूकता ही लोकतंत्र का मूल्य है। हांसा कहते हैं, विवेक के बिना लोगों की अयोग्यता के कारण प्रजातंत्र या तो कोलाहल करने वालों के शासन में परिणत हो जाएगा या तानाशाही के रूप में विकृत हो जाना चाहिए क्योंकि यह जनता की बुद्धि सहज होनी चाहिए और बिना शिक्षा के वो कुछ नहीं कर सकते। तीसरा, आर्थिक समानता। कोल के शब्दों में कहा जा सकता है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक समानता एक भ्रम मात्र है। हॉब्सन के अनुसार धनिकों का धन और निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देती है, अतः एक निश्चित सीमा तक आर्थिक न्यूनता की लोगों को प्राप्ति होनी चाहिए। इसके बिना व्यक्ति अपने आर्थिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त रहेगा और राज्य के प्रति ध्यान नहीं दे पाएगा। चौथा, नागरिक स्वतंत्रताएं। सभी व्यक्तियों को नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए और विचार, अभिव्यक्ति, प्रेस, साहित्य इत्यादि की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पांचवा, लिखित संविधान और प्रजातंत्रीय परंपराएं। लिखित संविधान के द्वारा सरकार के रूप, अधिकार और कर्तव्यों का सरलता से ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। ब्रिटेन में विरोधी राजनीतिक दल को सम्मान दल बदन करने पर प्रत्याग और छाया मंत्रिमंडल के रूप में अनेक प्रकार की श्रेष्ठ परंपराएं विद्यमान हैं। छठा, समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए। धर्म, जाति, रंग इत्यादि पर भेदभाव नहीं होनी चाहिए। सातवां, समाज में एकता का भाव दृढ़ होना चाहिए। राज्य की जनता भाषागत, जातिगत और प्रांतीय भेदों को बहुत अधिक महत्वपूर्ण देती है। जहाँ पे वहाँ पे लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। हानरा के शब्दों में, एकता का दृढ़ भाव और सामुदायिक जीवन की व्यापकता लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। आठवां, स्थानीय स्वशासन होनी चाहिए। अल्फ्रेड स्मिथ लिखते हैं, प्रजातंत्र के सभी लोगों का निदान अधिक प्रजातंत्र के द्वारा ही हो सकता है। ब्राइस, प्रजातंत्र का सर्वश्रेष्ठ शिक्षणालय और प्रजातंत्र की सफलता की सबसे बड़ी गारंटी स्थानीय स्वशासन का प्रचलन है। नवां, सशस्त्र और सुदृढ़ राजनीतिक दल होनी चाहिए। दसवां, न्यायप्रिय बहुमत और सहनशील अल्पमत होनी चाहिए। बहुमत को सहनशील और अल्पमत को भी सही ढंग से सत्ता संवैधानिक ढंग से सत्ता हथियाने की कोशिश की जानी चाहिए। बुद्धिमान और सतर्क नेतृत्व होनी चाहिए। विश्व शांति की स्थापना होनी चाहिए और योग्य या निष्पक्ष नागरिक सेवाएं होनी चाहिए। यह रिकॉर्डिंग पिंकेश कुमार के द्वारा बीए प्रथम वर्ष राज्य विज्ञान के सिद्धांत पुखरा जैन की पुस्तक के द्वारा सुजीत कुमार के लिए 21 दिसंबर 2007 को की गई है।